यह भाव और अभाव दोनों से विरहित है। वहां न उदय है न अस्त, न मति न बुद्धि। कहने से वह प्रकट नहीं होता, प्रकट भी हो तो जाना नहीं जाता। वह तो सहस भाव से लीन हो जाने का विषय है। उस अविगत को कहकर कैसे बखाना जाए, जहां पर वह निरंकुश और निरंजन पुरुष रहता है। वहां कुछ है भी या नहीं, कौन कहे। कहिया न उपजे उपजा जही, जाने भाव अभाव बिहुना। उदय अस्त जहाँ मति बुद्धि नाही, सहज राम लोकियना। पृष्ठ संख्या 54। अजीब समस्या हो, कहूँ तो कहा न जाए, कहे बिना रहा न जाए। बस एक ही मार्ग है कि समझदार के सामने ही कुछ कहा जाए, क्योंकि ज्ञानी ही समझ सकता है कि यह बोलने की समस्या कितनी उलझदार है। बोलने से उस पर ब्रह्म की पर ब्रह्मा किस सीमा तक नसाती है। जैसे बोलना का कहिए रे भाई, बोलत बोलत तत नसाई। बोलत बोलत बढ़े विकारा, बिन बोलिया क्यों होए बिचारा। संत मिले कछु कहिए कहिए, मिले असंत मुष्टि करी रहिए। ज्ञानी सु बोलिया हितकारी, मूरख सु बोलिया इजमारी। कहे कबीर आध घट डोले, भरिया होए तो मुखा न बोले। उपनिषदत का ऋषि नेति नेते कर कर काम चला लेता है, या उसे भी न करके मौन साध सकता है, किंतु संत ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि वह जानता है कि बोले बिना विचार असंभव है। ठीक है कि बोलने से तत्व नष्ट होता है, लेकिन चुप रहना भी तो संभव नहीं है। उस परब्रह्म राम के विषय में कहने सुनने से जो सुख मिलता है, वह परमार्थ लाभ होता है, और उसे कैसे छोड़ा जा सकता है। अतः संत बोलने से प्राप्त होने वाले सुख के लिए उस मन वचन के अतीत को हार कह लिया करते हैं। जैसे ब्रह्म के विषय में पूछे जाने पर गौतम बुद्ध मौन रह गए थे, उपनिषद के भाव नामक ऋषि ने भी ऐसा ही किया। वैसे ही जैसे ब्रह्म है न होकर भी है, नहीं न होकर भी नहीं है, ठीक वैसे ही वह अबोल होकर भी बोल है, और बोला जाकर भी अबोल। पृष्ठ संख्या 55। कबीर इसलिए उस अनिर्वचनीय को अस्ति नास्ति के बीच की तरह बोल अबोल के में भी बीच मानते हैं। इस शर्त के साथ ही इस बोले गए को भी गांठ मत बांधो, क्योंकि वह परमात्मा कैसा है इसे कोई नहीं जानता। सभी लोग और ही बोलते हैं। सुंदरदास कहते हैं कि भाई जैसे जस्तु तस तो ही कोई न जान, लोग कहे सब आन ही आन। सुंदरदास कहते हैं कि भाई मैं उस परब्रह्म को जैसा कहता हूँ वह जैसा ही नहीं है, लेकिन है अवश्य। बस सच कहना हो तो यही कहा जा सकता है कि वह जैसा है वैसा ही है। अगर उसे कोई किसी खास तरह का ही बताने का आग्रह करता है, तो नानक को पूरा निश्चय है कि उसे आगे चलकर पछताना पड़ेगा। नासवान लेखे से अनुस्वर का वर्णन असंभव है, अतः नानक कुछ न कहकर बस उसे बड़ा ही कहने का सलाह देते हैं। पैराग्राफ चेंज। इस प्रकार इन प्रेम लपेटे और अटपटे बोलों से स्पष्ट है कि कबीर का राम त्रिगुणा अतीत है, द्वैत्वादेत विलक्षण है, भावाभाव बिन उन्मुक्त अलख है, अगोचर है, अगम्य है, अकथ्य है, और अद्वैत वेदांत के परब्रह्म का समसील है। लेकिन इतना ही नहीं, इससे थोड़ा अधिक भी है। अद्वैत वेदांत का ब्रह्म निर्गुण होने के कारण निर्मम और निष्ठुर है। वह जीव के दुख दर्द के साथ नहीं देता। मजलूमों बेबसों की पुकार सुनने के अयोग्य है। उसके कान आंख और बुद्धि तो नहीं ही है, हृदय भी नहीं है। अतः भक्त के लिए वह अयोग्य और भक्त के लिए बेकाम है। पृष्ठ संख्या 56। शंकर अद्वैत की विरोध का सबसे बड़ा कारण ब्रह्म की उस यह निर्गुणता और हृदयहीनता ही थी। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के द्वारा, निम्बार्क ने द्वैताद्वैत, मध्व ने द्वैत, वल्लभ ने शुद्धाद्वैत, रामानंद ने अद्वैत ब्रैकेट में या शायद विशिष्टाद्वैत तथा चैतन्य ने भेदाभेद के द्वारा शंकर के अद्वैत को अस्वीकार सो इसी कारण किया। इन आचार्यों ने निर्गुण की जगह सगुण ब्रह्म की प्रतिष्ठा की थी, पर कबीर भक्ति के प्रति एकमात्र आस्थाशील होने पर भी सगुण ब्रह्म को स्वीकार नहीं कर सके। निर्गुण से सगुण की यह लंबी यात्रा कबीर तक आते आते गतानुगतिकता भर कर रह गई। सब कुछ ऊपरी व्यवहार हो गया था, पर ब्रह्म जाति धर्म के बंधनों से जकड़ उठा था। राम कृष्ण क्षत्रिय और परशुराम ब्राह्मण बनकर रह गए थे। मंदिर कुछ खास वर्गों जातियों की बपौती थी। किरी से लेकर कुंजर तक जिस साई के जीव थे, वह साई दशरथ का बेटा, रावण का शत्रु, देवकी की कोख से सामान्य शिशु की तरह जन्मने और व्याध के तीर से मरने वाला सामान्य मायालिप्त संसार बन चुका था। महामानव वह हो सकता था। संतों ने अपने ब्रह्म की अनेक विशेषताओं के बोध के लिए उसके इस पक्ष को बहुधा अपनाया भी है, पर वह त्रिगुणातीत, द्वैत्वाद्वैत विलक्षण, भावाभाव विनिर्मुक्त अलख, अगोचर और अगम्य ब्रह्म नहीं हो सकता। कबीर को पक्का विश्वास था कि दशरथ सूत का बखान करने वाला त्रिलोक्य राम नाम के मर्म से अपरिचित है। कबीर जिस साहब के साथ लगे हुए हैं, उनकी बराबरी का और कोई नहीं है, और न कोई उसके आदि अंत को जान सकता है। वह न रूप है, न अरूप है, न हल्का है, न भारी। वह तो अबोल, ब्रैकेट में वागतीत और अतोल है। भूख प्यास, धूप छा, सुख दुख, सबसे अतीत रहने वाला वह परमेश्वर सब में विराजमान है। वह अविगत है, अपरंपरा है, ज्ञान स्वरूप है, सर्वव्यापी है। बहुत सोच विचार कर देखा। पृष्ठ संख्या 57। उस राम का कोई समकक्ष नहीं। उसके साथ रहकर मैं सनाथ हूँ, दुख सुख से अतीत हो गया हूँ। मेरा वह राम दशरथ के घर अवतरित नहीं हुआ। उसने लंका के राजा को नहीं सताया, देवकी की कोख में भी वह नहीं आया, न यशोदा ने उसे गोद में ही खिलाया, न वह ग्वालों के साथ फिरा, न उसने उंगली पर गोवर्धन को उठाया, न उसने वामन रूप में बलि को छला, न वराह रूप में उसने धरती और वेद का उद्धार ही किया। वह न गंडक का शालिग्राम है, न कोल, न मक्ष कक्ष होकर जल में विरचने वाला। बद्री का आश्रम में बैठकर उसने ध्यान नहीं लगाया, परशुराम बनकर शत्रुओं का संहार नहीं किया। द्वारावती में उसकी, ब्रैकेट में कृष्ण रूप में मौत नहीं हुई, जगन्नाथ में उसका शरीर नहीं गाड़ा गया। कबीर की मानो यह सब ऊपरी व्यवहार है। जो संसार में बरल रहा है वह इन सबसे अगम्य है। वह आदिकर्ता कर्मों से अतीत है, आवागमन से ऊपर है। वह न अजन्मा है, न मरता है। सहस्रों पृथ्वी और आकाशों में उसका प्रसार है। वह देश और काल से ऊपर है। वह नाद बिंदु से अतीत है। वही हमारा खसम है। अगर कहो कि वह दशरथ का बेटा है, तो भाई दशरथ को किसने जन्माया? स्वयं दशरथ का पिता कहाँ से आया? भला जो कर्मों से बंधा हुआ हो, वह कर्ता कैसे हो सकता है? अगर वह दशरथ का बेटा है, तो निश्चय ही दशरथ के पहले वह नहीं हो सकता। पर मेरा राम तो तब से, जब सृष्टि का पता ही नहीं था, जब न पवन था, न पानी, न धरती थी, न आकाश, न शरीर था, न शरीर को धारण करने वाला स्थान, न गर्भ था, न मूल, न कली थी, न फूल, न शब्द था, न स्वाद, न विद्या थी, न वेद, न गुरु था, न शिष्य, उस समय तो गति से अतीत वह अकेला राम ही था। खैर, मैं उस नाव गांव से रहित अविगत की गति क्या कहूँ? जिसके गुण ही नहीं, उसका क्या देखे जाए और क्या नाम दे। पृष्ठ संख्या 58। भाई, जीभ के स्वाद के लिए जितने उपाय करते बने करो, पर इतना जान लो कि जो भी गर्भ में आता है वह कृत्रिम है, बनावटी है। वैसे ही जैसे हिंदू और मुसलमान, सुन्नती और जनेऊ, वेद और षटकर्म, जाति और वर्ण, गुण का गर्व और कुल का अभिमान, सभी झूठा है। पैराग्राफ चेंज। साफ है कि कबीर का राम न ज्ञानियों का अद्वैत ब्रह्म है, न भक्तों का सगुण ब्रह्म। वह इन दोनों के बीच का है। वह अद्वैत सत्ता है, लेकिन प्रेम का अभिषेक नहीं है, दया माया से ही नहीं है। भक्त का दुख दर्द उस पर पहुंचता है स्वभाव के अनुसार। भक्त उससे पिता पुत्र, पति पत्नी, स्वामी सेवक का संबंध स्थापित कर सकता है। वह कीड़ी से कुंजर तक सबकी खबर रखता है। वह प्रेम की पीड़ा देता भी है और उसे हरता भी है। ठीक है कि वह चतुराई से नहीं रिझाता, मन के भाव से रिझाता है, पर रिझाता तो है। भावसागर के विष, ब्रैकेट में विषय या विष, से भरे जल में बेचैन मन वाले कबीर को राम का समर्थ प्रेम उस पार लगा देता है। जैसे भावसागर जल विष भरा मन नहीं बांधे धीर, सबल से नहीं हरी मिला, तब उतरा पारी कबीर। पृष्ठ संख्या 59। वह परम प्रिय जब हृदय में प्रकट होता है, तो मन का मोह और शरीर का ताप सब मिट जाता है। अंदर बाहर शीतलता व्याप्त हो जाती है। उस समर्थ साईं के भरोसे चिंताएं छोड़कर निश्चित रहा जा सकता है। पशु पक्षी जीव जंतु आखिर उसी के सहारे ही तो पलते हैं, कहां उन्होंने पूंजी बटोर रखी है। संत कबीर गठरी नहीं बांधता सो भी इसलिए कि हरि उसके आगे पीछे हरदम खड़ा रहता है। उस प्रभु की और आदत ही ऐसी है कि वह सबकी चिंता सदैव करता है, और यह सब करने के लिए उसे रूप धारण करने की जरूरत नहीं पड़ती। यही कबीर के राम की द्वैताद्वैत विलक्षणता है। इसी भावभूमि पर आकर वह त्रिगुणातीत, भावाभाव, निर्मुक्त, द्वैताद्वैत विलक्षण और परम प्रेम स्वरूप बनता है। अद्वैत सत्ता के प्रेम स्वरूप होने में कोई बाधा भी नहीं है। पृष्ठ संख्या 60। प्रतिभिज्ञान दर्शन का ईश्वराद्वय सिद्धांत दार्शनिक स्तर पर इस ज्ञान मूलक अद्वैत भक्ति को पूर्ण स्वीकृति देता है। परिणामतः ज्ञान मूलक भक्ति की इस उदात्त भूमिका पर पहुंचकर विष्णु और कृष्ण, गोविंद और राम, अल्लाह और खुदा, रब और करीम, गोरख और महादेव, सिद्ध और नाथ उस अपरंपार के अनंत नाम बनकर एकार्थक हो जाते हैं और कबीर के भगवान राम की कल्पना को पूर्णता देते हैं। यहीं आकर उक्त नामों से अभिहित होने वाले सगुण अवतार निर्गुण ब्रह्म के वाचक बन जाते हैं, उनमें नई अर्थ संपत्ति भर जाती है। फिर तो विष्णु वह हो जाता है जो समग्र विश्व में परिव्याप्त है, कृष्ण वह है जिसने संसार का निर्माण किया है, गोविंद वह है जिसने ब्रह्मांड को धारण किया है, राम वह है जो सनातन तत्व है, अल्लाह वह है जिसने जननी रूप में सब कुछ को जना है, खुदा वह है जो दसों दरवाजों को खोल देता है, रब वह है जो 84 लाख योनियों की परवरिश करता है, करीम वह है जो इतना सब कर रहा है, गोरख वह है जो ज्ञान गम्य है, महादेव वह है जो मन को जानता हो, सिद्ध वह है जो इस चराचर दृश्यमान जगत का साधक है, नाथ वह है जो त्रिभुवन का एकमात्र यति है। जगत के जितने भी सिद्ध साधक और पैगंबर हुए हैं वे इसी इस एक की ही पूजा करते हैं। कबीर का यही एक भगवंत है, वह अलभ्य अलक्ष्य और निरंजन है, उस अपरंपार के अनंत नाम है। जैसे अलह अलख निरंजन देव की ही विधि करो तुम्हारी सेव, विष्णु सोई जाको विस्तार, सोई कृष्ण जिनी कियो संसार, गोब्यंद ते ब्रह्मांड ही गह सोई राम जे जुगी जुगी रहे, अलह सोई जिन उमति उपाई, दस दर खोले सोई खुदाई, लोक 84 रब पर वरे, सोई करीम जे एति करे, गोरख सोई ज्ञान गमी गहे, महादेव सोई मन की लहे, सिद्ध सोई सो साधे इति, नाथ सोई जो त्रिभुवन जति। ऊपर के कुछ नाम उसी एक के ही है, कबीर उसे राम कहते हैं। पृष्ठ संख्या 61। गुरु ने उन्हें इसी राम नाम का उपदेश दिया था, इसलिए जैसे कोई भी दूसरा नाम हो कबीर को कोई एतराज नहीं, इसलिए राम नाम भी हो सकता है। बस इसी नाम का विशेष के प्रति वे थोड़े अधिक आग्रहवान हैं, तो केवल इसलिए कि गुरु ने उन्हें उपदेश दिया है। बस